चंद टिप्स देना चाहूंगी आपको जो आपको ऑर्गेनाइज करने में फायदा देगी, वो क्या है। पहली बात तो ये है कि हम एक गोल मुकरर कीजिए, क्योंकि वो लोग जिनके गोल्स नहीं होते ना, तो वो गोल गोल घूमते ही रहते हैं, सारा दिन घूमते रहेंगे और एंड ऑफ द डे करेंगे कुछ नहीं। हमारी जिंदगी आज कुछ इसी किस्म की हो चुकी है। इवन हम दीन के भी काम करते हैं ना, लेकिन हम क्यों करते हैं, बस कर रहे हैं, गोल नहीं होता। मुझे कहाँ पहुंचना है, मैं क्या करूं, मैंने जिंदगी में क्या हासिल करना है। पहले तो अपने आप को पहचानिए, अपनी खामियों को पहचानना है, कौन सी चीजें जो मुझे तरक्की करने के रास्ते में रुकावट बनती हैं, उसको निकालने की कोशिश करें। फिर इसी तरह एक और कमिटमेंट अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है। इसका सबसे आसान तरीका बता देती हूँ। अगर आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं ना, तो जिंदगी से गैर जरूरी स्टफ निकाल दें। अब देखिए कि आपने कभी महसूस किया हो, जब आप अपनी अलमारियों की सफाई करते हैं, आप उनको दोबारा ठीक ठाक करके रखते हैं, लेकिन आप कहते हैं 2-3 दिन गुजरते हैं फिर वैसे ही हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि सामान उसमें ज्यादा है, आपको ढूंढने के लिए फिर पीछे से चीज निकालनी पड़ती है और वो सब हिल जाता है। किचन के क्लोजेट देख लीजिए, अपने ड्रॉर्स को देखिए। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल हर वो चीज हो जो सामने दिखे, जरूरत की चीज है, अवेलेबल है, आप उसको उठाएंगे, ले लेंगे। गैर जरूरी चीजों को जिंदगी से निकालने का फायदा क्या होता है कि आप फिर बहुत जल्दी मैसअप नहीं होते। मैंने हमेशा अपनी जिंदगी में एक असूल रखा है। मैं बहुत शुरू से, मुझे याद है कि मेरी जब सारे कपड़े होते हैं, इंसान शादी से पहले भी धुल के आ जाते थे, इस्तेमाल के कपड़े सब कुछ इस्त्री, लेकिन मेरी अलमारी में कोई नहीं रखता था। और यानी वो कहते थे किसको पसंद नहीं आते, तो मैंने अब जहरे मेरी वालदा है तो मैं उनसे ये कहती थी कि हाँ आप लोग नहीं रखा करें, आप इस तरह रख देते हैं कि वो देखने से अलमारी में एक एक बिल्कुल यकरंगी का एहसास नहीं होता। और फिर मैं बड़े तरीके से कमीज के अंदर शलवार और दुपट्टे को रख के इस तरह रखती थी कि हर चीज जो है वो अपनी जगह पे दिखे। फिर कलर्स के साथ भी फर्क करके रखती थी कि बिल्कुल ऐसा लगे कि जो चीजें मेरे सामने सामने रहे। अभी तक भी अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए कि बहुत सारी अब तो चीजें जिंदगी में शामिल हो गई। और मैं अपने बारे में हमेशा यही सोचती हूँ कि मुझे या तो किसी ने ये दुआ दी होगी कि तुम हर वक्त कागजों में रहो। जब भी ऑर्गेनाइजिंग की बात आती है तो हमेशा अपने पेपर्स ही ऑर्गेनाइज करने में टाइम लग जाता है। मैं खुद भी अपने आप को इस आने वाले कोर्स के लिए तैयार कर रही थी, तो मैं इस उलट पुलट का मकसद भी क्या होता है कि ऐसे दबे हुए खजाने निकलते हैं, कुछ पेपर्स, कुछ ऐसी चीजें कि जो वाकई फिर बाद में फायदा देती हैं चीजें। तो उसमें ये है कि आप अपनी चीजों को, फालतू चीजों को अलग कर दें। कुछ चीजें अहम हैं उनको अपने सामने रखिए, जिन चीजों की रोज जरूरत पड़ती है उनको हाथों में रखें, कुछ चीजें कभी कभी की जरूरत की हैं उनको पीछे रखिए। किचन में भी जब आप चीजों को सेटल करें तो हमेशा यही अंदाज रखा करें। बास खवातीन हैं उनको ऑर्गेनाइजिंग आती नहीं है, और मैं महसूस करती हूँ कि कीमती चीजें होने के बावजूद वक्त पे मिलती नहीं है, और हैं तो इतनी अजीबो गरीब हालत में है कि वो अपना हुस्न खो चुकी है। इस्लाम इंसान को बेढंगा नहीं बनाता, ढंग के साथ, सलीके के साथ, खूबसूरत तरीके से घरों को सजाइए, रखिए। कोई जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत कीमती चीजें हों, मेरा ख्याल है कि 2-3 प्लेट से ज्यादा नहीं होती इंसान के पास अपने इस्तेमाल की। यानी मैंने तो अपने किचन में सिर्फ 2-3 प्लेट और 2-3 ग्लास और इससे ज्यादा नहीं रखा हुआ सामान। क्यों, कौन इतनी मुश्किल में पड़े कि अब इसमें खाएं, किसमें खाएं, और निकालते हुए रखें, तोड़ें, फिर इतने जमा हो जाएं, फिर धोने का मुश्किल है। हम बस आम इस्तेमाल की एक एक दो दो प्लेट है। खाना निकालते जरूर एक नजर देखती हूँ कि अच्छा आज खाना किस रंग का है। मिसाल देती हूँ आपको कि अगर आपने दाल पकाई और वो पीले रंग की है, तो कोशिश करें कि प्लेट, अगर आपके पास ग्रीन कलर की प्लेट है तो वो निकाल लें। बस इतना भी इख्तमाम काफी है। ये बहुत ही फोहड़पना होगा कि आपने सालन भी भुना हुआ पकाया और गोश्त गोभी के जरा सुरख थोड़ा ज्यादा, प्याज लाल हो गई, और अब सब्ज रंग के डोंगे में डालें, वो और काली लगेगी, कोई नहीं खाएगा। डार्क कलर का खाना हो ना, तो उसको लाइट डोंगे में निकालें। ये छोटी छोटी उलट पुलट करते जाएंगे ना जिंदगी में चीजों को, तो आप देखिएगा कि आप दीन के साथ साथ अपनी दुनिया को भी खूबसूरत कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन एक्स्ट्रा स्टफ निकालिए। हमारा हाल क्या होता है कि बाज दफा अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, बड़े प्यार से निकालते हैं फालतू, फिर जब रखने लगते हैं ना तो वो दोबारा फिर रख देते हैं। नहीं लगता अब तो जगह बन गई, अच्छा चलो शायद कभी पहन लूं। ये जुमला लिखे अपने पास जरा कि शायद कभी पहन लूं। ये सोच के हमने, मेरा ख्याल है कि 10-10 साल पुराने कपड़े भी रखे हुए हैं और जिनकी आज तक बारी नहीं आई। कुछ जोड़े हमने इस नीयत से रखे हुए हैं कि ये मेरी शादी की निशानी है, ये मेरा वलीमे का जोड़ा है, ये मुझे माँ ने दिया था। ठीक है, मोहब्बतें अपनी जगह, अगर आप नहीं पहनते तो वो किसी और के होंगे। मुझे किसी का कॉल बड़ा अच्छा लगा अभी, जैसे रिसेंटली मैं जब कहीं थी तो एक बुजुर्ग थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास जो भी जरूरत से ज्यादा चीज होती है मैं उसके बारे में ये सोच लेता हूँ कि ये मेरी नहीं है, ये असल में किसी और की थी जो मेरे घर में पड़ी हुई है, तो मैं ढूंढता हूँ किसी जरूरतमंद को, उसको दे देता हूँ, तो वो मैं मुतमईन हो जाता हूँ कि अच्छा ये तो उसकी जरूरत की थी, ये मेरे पास नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह दिल बड़ा करके बेकार चीजों को निकालें। जरूरत की चीजें होती हैं घर में, साफ भी जल्दी होती हैं, फैलता भी कम है, तो इससे इंशाल्लाह ताला आपको फायदा होगा। फिर एक और चीज जो आपको ऑर्गेनाइज करने में फायदा देगी वो क्या है कि नो कहना सीखें। बास जगह हम नहीं जाना चाहते लेकिन मुरव्वत के मारे नो नहीं कह पाते। कोई दावतें हैं, कोई पार्टीज हैं, कुछ महफिलें अब इतनी अच्छी नहीं लगती, तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड मोहब्बत से प्यार से ना कर दें। हमारा वक्त जो जाया होता है वो इस वजह से भी बहुत ज्यादा होता है कि हम लोगों को हर जगह अपने आप को फिट करते हैं। फिर इसी तरह अपने लिए लिखिए कि मैं उस चीज पर फोकस करूंगी जो मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। और अब इसके लिए जरूरत महसूस होती है कि आप सोचें क्या मेरे लिए सबसे अहम है। सोचें, मेरा ख्याल है फौरन बहुत सारी बहनों के दिल में तो ख्याल आया होगा, बच्चे भी शोहर हैं वो हैं, लेकिन इसको लॉन्ग रन देखिए, आखिरत के सिनेरियो में देखिएगा। ला तजूल कदमन इब्ने आदम इंद रब्बिही हत्ता युसल अन्हु खम्सा, इसमें देखिएगा कि मेरे कल के लिए क्या जरूरत है। तो उसके लिए मुझे तो एक ही चीज समझ आती है कि अपनी आखिरत संवारनी है। अगर इस आने वाले साल को हम कुरान का साल दे देना, ये कुरान सीखना है जो मेरे रब का पैगाम है मेरे नाम, मैंने इसको हक देना है। आज 30, 40, 50, 60 साल की उम्र तक मैंने इसको पोस्टपोन किया हुआ था, एक खूबसूरत शेल्फ में सजाया हुआ था, अब इसको मैंने मोहब्बत से उठाना है और इसको पढ़ना है और इसके साथ सीखना है। आप देखिए कि जिंदगी में कभी तो वक्त निकालना ही पड़ेगा ना इस किताब को सीखने के लिए। अमूमन हम क्यों नहीं सीखते? उजर, बहाने, एक्सक्यूजेस, सारी एक्सक्यूजेस को बंद करना है। हम दीन सीखने का काम तो बिल्कुल वहां डाल देते हैं जहां शायद हमने अपना कोई बेकार सामान भी नहीं डाला होता। घरों में हर वक्त आप देखिए मुख्तलिफ तरह की चीजें हमारे सामने होती हैं, लेकिन कुछ चीजें बिल्कुल दिखती नहीं। आखिरी वैल्यू, लीस्ट प्रायोरिटी नहीं, क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी में एक साल या उससे कुछ जायद अपने रब के नाम पे नहीं दे सकती? कल क्या जवाब दूंगी उसको जब वो कहेगा अन उम्री ही फी मा अफना हो, तुम बताओ तुमने अपनी उम्र कहाँ गुजारी? क्या जवाब दूंगी? क्या उस दिन की रुसवाई से आज ही खौफ नहीं आ रहा सोच के? अमूमन लोग कहते हैं सीखना तो है लेकिन अभी मसरूफ बहुत है, अभी शादी नहीं हुई। अच्छा, शादी हो ले फिर अपने घर जाएंगे फिर सीखेंगे। फिर बास उनको गर्मी बड़ी लगती है, हाय गर्मी बड़ी है, गर्मियों में फोकस नहीं होता, हबस होती है, घुटन होती है, चले ठीक है ना से अब पढ़े, अब सर्दी बड़ी लगती है, सुबह सुबह उठना निकलना घर से बैठना मुश्किल लगता है, चले अब पढ़ ले, नहीं अब तो स्प्रिंग आ गया ना, अब ये तो घूमने के दिन है। कुछ हम ही जैसे लोगों के लिए अरबी का एक शेर है, एक शायर ने बड़ा खूबसूरत अंदाज इख्तियार किया, कहते हैं कि इजा यूजी का हर्रुल मसीफ व यफसुल खरीफ, कहते हैं कि जब तकलीफ देता है तुमको गर्मियों की गर्मी, यानी गर्मियों में गर्मी बड़ी तुम्हें लगती है, व यफसुल खरीफ और खजां की खुश्की तुम्हें तकलीफ देती है कि आजकल मौसम बड़ा खुश्क है, व बर्दुशिता और सर्दियों की ठंडक तुम्हें बड़ी तकलीफ दे लगती है, वयुल्ही का हुस्न ज़मान रबी और गाफिल करता है तुमको हुसन बहार के जमाने का, तो फिर बताओ فَأَخْذُكَ لِلْعِلْمِ قُلْ لِي مَتَى. پھر مجھے بتاؤ کہ تم علم حاصل کب کرو گے. یعنی ہر وقت ہم لوگ اسی شکوے میں رہتے ہیں کہ بس ابھی میرے حالات نہیں قابل اس. میں نے دیکھا بعض لوگ صرف اس لیے نہیں کرتے, ابھی میرا اپنا کمرہ نہیں ہے, اسٹڈی روم نہیں ہے, اس لیے میں نہیں پڑھتی, اسٹڈی ٹیبل آئے گی تو پڑھوں گی. پھر کچھ لوگ یہ سوچے بیٹھے نہیں اپنا کمپیوٹر نہیں ہے, اور اگر آن لائن کلاسیں رہنی ہے تو پھر اپنا کمپیوٹر آئے گا تو سیکھوں گی. کچھ کہتے ہیں اچھا ابھی میری یہ بچی بڑی چھوٹی ہے اس لیے نہیں. میں نے عموماً دیکھا ہے کہ خواتین یہی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اچھا ذرا ابھی تو اسکول جا رہے ہیں, ذرا بعد میں آئیں گے. اسکول جانے کے بعد پوچھیں کیا ہے, اب جاب لگ گئی ہے, اب جاب کے لیے نہیں آ رہے, اب کیا مسئلہ ہے, اب شادی ہونے والی ہے, اس کی تیاریوں میں اب تو پاکستان جا رہے ہیں. شادی ہونے کا مطلب یہ کہ ایک سال تو آپ کا تیاریوں میں گیا, اب کیا ہے جی اب شادی ہو گئی ہے, اب تو شروع شروع کے دن ہے, ذرا گھر والوں کو خوش کر لیں چلیں. اب کیا ہو گیا جی, اب اللہ نے امید دے دی بچہ ہونے والا ہے, اب کیا ہے جی بچہ ہو گیا, بس ہو جائے گا تو پھر آؤں گی, آج کل تو بیٹھا نہیں جا رہا. پھر وہ ہو گئے تو وہ چون چون شروع ہو گئی, اور پھر بس یہ ذرا بڑا ہو لے, اسکول گوئنگ ہو جائے, پھر آؤں گی, اور پھر پتا چلتا ہے کہ وہ تو اب اسکول لینا بھی جانا بھی چھوڑنا بھی ہے. اور وہی بات ہے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. جواب شکوہ اور شکوہ ہے ان کا ایک کلام کا مجموعہ, تو اس میں اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ تم نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا, اب بھیج دیے, اب مجھے بڑے کام ہے, اب تو میرا انتظار کر. تو ہم سب بھی اپنے رویوں کے ساتھ ایسا ہی کام کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ جب ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو ہمارے تھوڑے وقت میں بھی برکت ہوتی ہے. اسلام نے بھی ہمیں ٹائم مینجمنٹ سکھائی ہے. میں رات کو غور کر رہی تھی تو میں نے لکھی کچھ چیزیں کہ کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مینج کرنے کا خود ہی درس دیا. مثلا اگر آپ دیکھیے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ کچھ کام ایسے ہیں جو سال میں بس زندگی میں ایک بار کر لو تو کافی ہے. مثلا حج, حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے, ٹائم کے ساتھ اس کو جوڑ دیا نا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جہاد کرنا, اس کے بارے میں بھی روایت آتی ہے نا کہ جس نے سوچا بھی نہ اور کم از کم ایک لمحہ یا اس کا اللہ کے راستے میں ضرور ایسا گزرے کہ وہ اس میں دین کا دفاع کرے, یہ ون سا ٹائم تھی. پھر اس طرح آپ دیکھیے کچھ چیزیں اینولی بیسڈ ہیں, سالانہ. مثلا ایک بار سال میں جو کرنے کی چیز ہے وہ زکات دینا, ایک دفعہ زکات دے دی تو سال کا حساب برابر ہوا. پھر اسی طرح سال کے بعد دیکھیے کہ روزے رکھنا, 30 روزے سال میں ایک دفعہ رکھ لیے, اب پورا سال کوئی ایک روزہ بھی نہیں رکھتے تو کوئی حرج نہیں. پھر کچھ چیزیں ہمیں ماہانہ سکھائیں, یعنی منتھلی بیس پہ. بس آپ دیکھیے کہ نیا چاند دیکھ کے دعا کرنا, ایک دفعہ ہوئی ہو گیا ختم. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں عبادات ہیں جو ہفتہ وارانہ ہمیں ٹائم مینجمنٹ دیتی ہیں. مثلا جمعے کی نماز ہفتے میں ایک دفعہ ہی ہوتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہفتے میں دو بار ہیں, جیسے پیر اور جمعہ رات کا نفلی روزہ رکھنا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ روز کی ٹائم مینجمنٹ سکھائی, 5 نمازیں. یہ ٹائم مینجمنٹ سکھائی جا رہی ہے نا کہ کیسے وقت کا استعمال کرو. 5 دفعہ جب بندہ نماز کے لیے اٹھتا ہے تو اس کا خود بخود ہی باقی کام جو ہے وہ سیٹ ہونے لگتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نماز کے بعد کے اذکار, اور اسی طرح ہر لمحہ اللہ کی ذکر یاد, یعنی منٹ اور سیکنڈز تک کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پلاننگ کر کے دکھائی کہ ہم یہ سب کچھ کریں گے تو زندگی میں فائدہ ہوگا, ورنہ اس کے بغیر بات نہیں بنے گی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.